नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार सचिन गौर से। 18 अप्रैल 2019 के इस कार्यक्रम में सुनिए, लीबिया में भारी हिंसा के बीच रिहायशी इलाकों को भी बनाया गया निशाना, अब तक 25,000 लोग विस्थापन के लिए मजबूर। पेरिस में सैकड़ों साल पुराने ऐतिहासिक नोट्रेडाम कैथीड्रल में भीषण आग के बाद पुनर्निर्माण कार्य में यूएन ने मदद की पेशकश की। टिकाऊ विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और धन की आवश्यकता, और सेहत और पर्यावरण के लिए खतरनाक ई कचरे के दुष्प्रभावों को रोकने और रोजगार के बेहतर अवसर सृजित करने पर चर्चा। अब समाचार विस्तार से। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में भीषण हिंसा जारी है। मंगलवार को त्रिपोली के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसकी लीबिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख घसन सलामे ने कड़ी निंदा की है। मिशन प्रमुख ने कहा कि ग्रेटर त्रिपोली में रह रहे 30 लाख नागरिकों का ख्याल करते हुए इन हमलों को तत्काल रोका जाना चाहिए। रॉकेट हमलों में भारी आबादी वाले इलाकों और मासूम लोगों को निशाना बनाए जाने को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया गया है। लीबियन नेशनल आर्मी के नेता खलीफा हफ्तार का पूर्वी और दक्षिणी लीबिया के अधिकतर हिस्सों पर नियंत्रण है, और पिछले कुछ दिनों में उनके वफादार सैनिक त्रिपोली को अपने कब्जे में लेने के लिए हमले कर रहे हैं। वहां फिलहाल अंतरिम सरकार को यूएन ने मान्यता दी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के लीबिया कार्यालय के अनुसार लड़ाई के नए सिरे से शुरू होने के बाद अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 900 से अधिक घायल हुए हैं। हिंसा से प्रभावित लोग लगातार घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं, और घरेलू विस्थापितों का आंकड़ा बढ़कर 25,000 से भी ज्यादा हो गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के ऐतिहासिक नोट्रेडाम कैथीड्रल में भीषण आग से हुए भारी नुकसान के बाद संयुक्त राष्ट्र ने गिरजाघर के पुनर्निर्माण में मदद की पेशकश की है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने कहा है कि वो आग से हुई क्षति का अनुमान लगाने और पुनर्निर्माण के लिए सांस्कृतिक विशेषज्ञों वाले आपात मिशन को भेजने के लिए तैयार है। सोमवार शाम को लगी आग से चर्च की छत का 2/3 हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। इस गिरजाघर को गौथिक स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण माना जाता है। चर्च का निर्माण कार्य 1160 में शुरू हुआ, जो लगभग 100 साल तक चला, और फिर 1991 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र की निदेशक मिशेल रॉयसलर ने गिरजाघर का दौरा करने के बाद यूएन न्यूज को बताया,
So many, many people going from the metro to the side of Notre Dame, and actually they are still, I have to say, many people are still in a state of shock.
मैंने कई लोगों को देखा जो मेट्रो से नोट्रे डाम जा रहे थे और स्तब्ध थे, क्योंकि ये सिर्फ ईसाई समुदाय की नहीं बल्कि हम सब की इमारत है। ये एक सार्वभौमिक प्रतीक है और फ्रांस का केंद्र है। यही बात लोगों को गहराई तक दुख पहुंचा रही है कि अपनी पहचान से जुड़ा कुछ उन्होंने खो दिया है। वहीं यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अजोले ने भी घोषणा की है कि स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जल्द से जल्द अब तक हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा और जरूरी मदद पहुंचाई जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की आकांक्षा एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था की है जो सभी के लिए लाभकारी हो, लेकिन महत्वाकांक्षाओं और सदस्य देशों से मिलने वाली वास्तविक धनराशि में करोड़ों डॉलर का अंतर है। इस सप्ताह फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट फोरम या विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने पर न्यूयॉर्क में एक बैठक हुई, जिस दौरान अपने संबोधन में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने ये बात कही। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि दुनिया के पास गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय दबावों का सामना करने के साधन मौजूद हैं। 2030 का टिकाऊ विकास एजेंडा, आदिस अबाबा एजेंडा फॉर एक्शन और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, लेकिन टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडा को लागू करने के लिए और धनराशि की आवश्यकता है।
Most people live in countries where inequality is growing, and in some countries the gender equality gap is also widening. These developments are cause for great concern.
अधिकतर लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां असमानता बढ़ रही है। कुछ देशों में लैंगिक समानता की खाई और चौड़ी हो रही है, और ये सब भारी चिंता का कारण है। इन रुझानों को उलट देने के लिए तत्काल वैश्विक कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश, उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए सहायता जरूरी है, खासकर निर्धनतम देशों के लिए, लेकिन घरेलू स्तर पर संसाधनों को जुटाने के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बैठक से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तेजी से काम करना संभव हो सकेगा। यमन में जारी हिंसा और संकट से आम लोगों के लिए जीवन पिछले साल और कठिन हो गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जानकारी देते हुए यमन के लिए विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स ने बताया कि हुदायदा और आसपास के इलाकों में यूएन समर्थित संघर्ष विराम नाजुक डोर से बंधा रहा है, लेकिन उससे आम लोगों के हताहत होने में कमी आई है और लोगों ने अब घर लौटना शुरू कर दिया है। हुदायदा में मोर्चों से सरकारी सुरक्षा बलों और हूती लड़ाकों को वापस बुलाने की योजना पर दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं, लेकिन इन इलाकों से इतर अन्य हिस्सों में हिंसा और तेज हुई है और देश गंभीर आर्थिक हालात का भी सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में मानवीय मामलों के प्रमुख मार्क लॉकॉक ने बताया कि कई क्षेत्रों में भीषण हिंसा जारी है और बच्चों समेत उसका शिकार हुए हैं। भावुक शब्दों में विशेष यूएन दूत ने कहा कि यमन में खून बह रहा है, देश में लोग भूखे हैं और बच्चों ने स्कूल में कक्षाएं नहीं देखी है। ये एक त्रासदीपूर्ण जगह है। दुनिया में हर साल 5 करोड़ टन ई कचरा पैदा होता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, रिमोट कंट्रोल, बिजली से चलने वाले और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कचरा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, खासकर इसलिए क्योंकि जहरीले कचरे के निपटान में लगे लोगों सही सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल नहीं करते। धातुओं के गलाने, प्लास्टिक, केमिकल के जलने से धुआं वायु को प्रदूषित करता है। इसकी गंभीरता को पहचानते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि ई कचरे के दुष्प्रभावों को तुरंत रोका जाना चाहिए। उसके साथ साथ ई कचरे को अच्छे और उपयुक्त कार्य के स्रोत में भी तब्दील किया जाना चाहिए। ई कचरे और खराब उपकरणों के पुर्जों को फिर से इस्तेमाल में लाने, उन्हें रिसाइकिल करने, उनसे बेहतर उत्पाद बनाने और फिर बेचने, हर चरण में कचरा प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने पर जोर दिया गया है। ई कचरे के बेहतर प्रबंधन से युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि तनाव, ज्यादा देर तक काम करने और बीमारियों से हर साल 28 लाख कर्मचारियों की मौतें होती हैं। 37 करोड़ लोग अपनी नौकरियों से जुड़ी वजहों के चलते या तो बीमार पड़ते हैं या फिर उन्हें चोट लगती है। रिपोर्ट कहती है कि काम के चलते किसी को भी जोखिम नहीं उठाना चाहिए। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।